नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक प्रेरक प्रसंग से आज की शुरुआत करते हैं। एक मूर्तिकार एक पत्थर उठाकर लाया, उसे तराशने लगा, उस पर छेनी हथौड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर तक तो वो पत्थर सहता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने कहा कि मुझे मूर्ति नहीं बनना है, कृपया आप मुझे बख्श दें। मूर्तिकार ने लाख समझाया कि मैं तुम पर इसलिए छेनी हथौड़ी चला रहा हूं ताकि तुम सुंदर मूर्ति बन जाओ, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। मूर्तिकार क्या करता, उसने एक दूसरा पत्थर उठाया और उसे तराशना शुरू कर दिया। यदि हमें सुंदर मूर्ति बनना है तो सहनशीलता तो जरूरी है। दूसरा पत्थर सहनशीलता धारण किए हुए रहा और वो एक सुंदर मूर्ति बन गया। उसे मंदिर में स्थापित कर दिया गया। लोग उसकी पूजा अर्चना करने लगे, उस पर फूल पान चढ़ाने लगे, उसकी आरती होने लगी। और जो पहला पत्थर था वो भी उसी मंदिर में था, लेकिन लोग उस पर नारियल फोड़ा करते थे। कहने का भाव, कई बार जब समस्याएं छीनी हथौड़ी बन करके हमारे जीवन में आती हैं, हमें ठोकती हैं, हमें पीटती हैं, तो हमें कष्ट तो अवश्य होता है, लेकिन याद रखें, वो कष्ट, वो सहनशीलता हमें एक ऊंचे शिखर पर ले जाती है जहां लोग हमारा गायन और पूजन करते हैं। तो हम ऐसी मूर्ति बने जिस मूर्ति की सभी पूजा करें। इसके लिए सहनशीलता आवश्यक है, इसके लिए धैर्यता आवश्यक है, जीवन में मूल्यों की आवश्यकता है। यही सिखाता है आपको समाधान और यही प्रेरणा बार बार हमें देते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए समाधान में उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
प्रता, एक सुंदर प्रसंग जो आज मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि तमाम दर्शकों के साथ इसकी चर्चा करें, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, कहीं ना कहीं वो समस्याएं हमें आगे की ओर बढ़ाती हैं, हमें पूजनीय और गायन योग्य बना देती हैं।
बिल्कुल, सहनशीलता और साथ में अपनी कमजोरियों की महसूसता, ये दोनों ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं। मेरे पास कई ऐसे प्रसंग आते हैं। एक बहुत सुंदर बात मैं सभी अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा। एक लेडी मेरे पास आई जो अपने पति के साथ लंबा काल तक संघर्ष करती रही और वो ये सोचती रही कि पति मुझे तंग कर रहा है। और जब उसने राजयोग सीखा, उसको डीप साइलेंस की अनुभूति हुई। अभी वो ज्ञान लिया है उसने एक डेढ़ साल से। उससे पहले शायद 32 साल वो अपने पति के साथ जूझती रही और उसको दोष देती रही, तुम मुझे तंग करते हो, सब जगह उसकी शिकायत करती रही। इसका जीवन भी अशांत, उसका जीवन भी अशांत, और बता रही थी कि इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत बुरा पड़ा। वो मानसिक रूप से बेचारे इतने स्ट्रांग, इतने पॉजिटिव नहीं रहे हैं, उनकी भी वो कई व्यथाएं लेकर आई थी। तो कहा, जैसे ही मैंने राजयोग सीखा और मुझे डीप रियलाइजेशन होने लगा तो मुझे पता चला दोस्त तो मेरा है। और अपना दोष स्वीकार करते ही इसने अपने को चेंज करना शुरू किया कि मेरे अंदर ईगो है, मैं गलत शब्द बोलती हूं, मैं दूसरों पर दोषारोपण करती हूं। और इसने अपने को जो चेंज किया तो इसके जीवन में एक साल से पूरी शांति हो गई, परिवार में शांति हो गई, और ये देखकर इसका पति भी ज्ञान में आ गया। तो मुझे बता रही थी कि मुझे बहुत बीमारियां लग गई थी, सीवियर सर्वाइकल था, ज्वाइंट पेन हो गया था, गैसेज, एसिडिटी और सभी बीमारियों का प्रकोप मेरे देह में दिखाई देता था। लेकिन जब से चित शांत हुआ, एक सवा साल हुआ है, मेरी सभी बीमारियां जाने लगी, अब थोड़ी सी बची हैं। तो देखिए, सहनशीलता और अपनी कमियों की रियलाइजेशन और उसको चेंज करने की इच्छा, ये एक निर्मल बुद्धि की पहचान है कि मनुष्य अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करता हो। ये महान आत्मा का लक्षण है और वो उन्हें चेंज करने के लिए तत्पर हो जाए। तो अब इसमें सहनशीलता आ गई, अब बच्चे भी महसूस करने लगे, पति महसूस करने लगा कि इसके बोल बदल गए, व्यवहार बदल गए, बात बात में क्रोध दिखाती थी, अपने पियर घर का नशा दिखाती थी, धमकी देती थी और अशांति घर में बनी हुई थी। देखिए, दूरगामी परिणाम इस का हुआ था अब शांत हो गया।
बिल्कुल, बहुत सुंदर बात ब्रदर जी आपने कही कि पूरे 32 वर्ष के जीवन में उन्होंने संघर्ष में बिता दिया, और एक छोटी सी बात की एक रियलाइजेशन कि मुझसे कहीं गलती हो रही है, और राजयोग से जो जैसे उन्होंने अनुभूति की वैसे ही सारा का सारा जो परिदृश्य है वो परिवर्तित हो गया, न केवल शारीरिक तकलीफें दूर हो गई बल्कि परिवार में भी शांति हो गई।
बहुत अच्छा, यही संदेश इस घटना के माध्यम से सबको जाता है कि वो मनुष्य जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, केवल दूसरों की कंप्लेंट्स ही नहीं करता, जो ये देखता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, घर में शांति लाने के लिए, घर में खुशी का माहौल बनाने के लिए मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूँ, जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है, जो अपने दोष देखकर उन्हें करेक्ट कर लेता है, जो अपने को सुधार लेता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर स्लोगन दिया है, खुद को बदलो जग बदल जाएगा, तो खुद को बदलो परिवार बदल जाएगा। ये बहुत अच्छा स्लोगन महावाक्य यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं, क्योंकि समस्याएं अपनी सहनशीलता की कमी के कारण, अपने ईगोइस्टिक नेचर के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने चिड़चिड़े स्वभाव के कारण बढ़ती जाती हैं।
ज्यादातर समस्याएं भ्राता जी इसी के कारण ही है। व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है, वो सोचता है कि मैं क्यों झुकूं, और कई परिस्थिति में ऐसा होता है कि जब वो झुकता नहीं है तो समस्याएं बढ़ती ही चली जाती
है। साइकोलॉजी यही है कि एक व्यक्ति अगर नहीं झुक रहा है तो दूसरा भी नहीं झुकेगा, और एक व्यक्ति अगर सोच ले कि नहीं मुझे नम्र होना है, मुझे फ्लेक्सिबल होना है, मुझे झुक के चलना है, तो दूसरे व्यक्ति को वही संकल्प आएंगे, क्योंकि विशेष रूप से पति पत्नी का जो नाता है वो साइकोलॉजिकली यानी मानसिक रूप से भी दोनों बहुत गहराई से आपस में जुड़े रहते हैं। इसलिए झुक कर चलना ये एक महान व्यक्ति की पहचान है, अकड़े रहना ये तो मुर्दे की पहचान है। और देखिए हम एक उदाहरण दिया ही करते हैं कि टहनियां पेड़ की जो फ्लेक्सिबल हैं, लचीली हैं, जो झुकती हैं, हवा तेज चले तूफान चले वो तो लहराती रहेंगी यानी झूमेंगी आनंद लेंगी, और जो खड़ा है टाइट पेड़ वो टूट के गिर जाएगा। इसलिए घरों की समस्याओं का एक बहुत अच्छा समाधान ये है, अपने जीवन को भी शांत में बनाने का, घर में खुशहाली लाने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि हमें झुकना सीखना है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम झुकेंगे तो दूसरे लोग हमें झुकाते ही रहेंगे, हम ऐसे झुकेंगे वो गर्दन पकड़ के नीचे कर देंगे, पर सब जगह ऐसा नहीं होता है। हम कायर नहीं है जो झुक रहे हैं, हम शक्तिशाली हैं जो झुक रहे हैं, हमें ये मान लेना चाहिए। शक्तिशाली व्यक्ति ही झुकेगा, और जो झुकता है वही दूसरे को भी ऊपर उठा सकता है, और इससे जीवन में और परिवार में बहुत अच्छा माहौल पैदा होता है।
वैसे भी कहा गया है भरता, जैसे आपने कहा वीरता की निशानी है, तो कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा वही कर पाता है, झुकता वही है जो वीर है। और जैसे आपने कहा नम्रता की बात, तो मुझे भी बात याद आ रही थी कि जिह्वा के लिए कहा जाता है कि जिह्वा बचपन से हमारे साथ रहती है और मृत्यु पर्यंत जीवन के अंत तक रहती है, दांत आते बाद में है और चले पहले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़े होते हैं। और आजकल तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि शायद व्यक्ति की नेचर बहुत कड़क हो गई है।
इसलिए दांतों के रोग संसार में बहुत बढ़ रहे हैं। वास्तव में ये सत्य है कि मनुष्य की जो नेचर है उसका प्रभाव उसके पूरे देह पर पड़ता है
जी।
उसका चेहरा रिफ्लेक्ट करता है कि इस मनुष्य का स्वभाव कैसा है। एक शांत व्यक्ति का चेहरा, उसके नैन सब कुछ अलग होंगे, और एक जो क्रूर व्यक्ति है उसका चेहरा, उसके आंखें, उसकी मूछें सब अलग दिखाई होंगे, रिफ्लेक्टिव वो अलग करेंगे। इसलिए हमें झुकना सीखना है, हमें ये कोशिश नहीं करनी है, हमें ये इंतजार नहीं करना है कि दूसरे झुकें, हमें तो स्वयं को झुकाना है। और झुकने के साथ देखिए, एक लोहे की रोड हो, उसको हमें मोड़ना हो तो हम पहले उसे गर्म करते हैं, जब गर्म हो जाती है तो आराम से मुड़ जाती है। तो वो व्यक्ति जो स्वमान में रहता है, जो अपने सुंदर विचारों में रहता है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट में रहता है, उसके लिए झुकना कोई बड़ी चीज नहीं, उसका ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम झुक रहे हैं, उसका एक नेचुरल संस्कार बन जाएगा, और हमारा झुकना दूसरों को भी झुकने के लिए बाध्य करेगा। नहीं तो क्या होता है, हर व्यक्ति सोचता है जो मैं कहूं, जो मैं चाहूं, बस वही सब करें, इवन छोटे बच्चे भी जिनको जिद्दी कहते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, जो मैंने मांग कर ली वो पूरी होनी चाहिए, मम्मी को ये करना ही चाहिए, जिद कर लेते हैं, झुकने का नाम नहीं। लेकिन जो बच्चे समझदार होते हैं, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने घर की परिस्थितियों को पहले से ही वो महसूस करते हैं, भाई हमारे घर में पैसा बहुत नहीं है तो हमें अपने माँ बाप पर दबाव नहीं रखना है, ऐसी चीजों की इच्छा नहीं रखनी है जो हमारे माँ बाप पर प्रेशर हो जाए या वो कर्ज लेकर उसको हमें दे। मान लो बाइक का आजकल क्रेज है युवकों को, बाइक होनी चाहिए, लैपटॉप होना ही चाहिए, हमारे पास एक बहुत सुंदर 20,000 का मोबाइल होना ही चाहिए। तो लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लेते हैं, जैसी स्थिति है परिवार की उस अनुसार व्यवहार करते हैं, मांग करते हैं और अपने माँ बाप को कोऑपरेट करते हैं, तो इससे परिवार में एक बहुत सुंदर माहौल बना रहता है।
बिल्कुल, मतलब जहाँ मूल्य रहेंगे, नम्रता होगी, आपसी समझ होगी, वहाँ परिवार में एक प्रेमपूर्ण माहौल बना रहेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं जन्म ले लेती हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच की बात हो, चाहे पेरेंट्स और बच्चों के बीच की बात हो। चलिए इन्हीं सुंदर बातों के साथ भ्रता जी मैं आपको पहले प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ। हमारे पास फोन कॉल आया था सुप्रिया शर्मा जी का बनारस से, और ये कह रही थी कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान सब में है, और जब हम ये मानते हैं तो सभी के लिए हमारे मन में सम्मान पैदा होता है। हमें डर भी रहता है कि भगवान हमें देख रहे हैं इसलिए हम कोई बुरा कार्य ना करें। फिर आप लोग ये जो ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात में कहां तक दम है और क्या ये शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है?
देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भगवान सबके अंदर है तो हमें डर भी रहता है, लेकिन
और सम्मान भी पैदा
सम्मान
होता
भी
है।
रहता है, लेकिन आज 95% लोग कहां डरते हैं, वो कहते हैं भगवान बैठा है बैठा रहे, हमें तो वही काम करना है जो हमें करना है। तो आजकल ये सिद्धांत अलग रह गया है और मनुष्य का व्यवहार अलग रह गया है। देखिए ये बात वास्तव में ऐसी भावनात्मक थी, सबके अंदर आत्मा है
जी।
ये कहां से शुरू हुई मैं इसके एक दो उदाहरण दे देता हूं। सभी के शरीरों में एक एक आत्मा रहती है जो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, तो बहुतों को इस आत्मा के साक्षात्कार होते रहे और उन्हें दिखता रहा कि सभी के अंदर ज्योति है और उन्होंने मान लिया कि सबके अंदर भगवान है या भगवान का स्वरूप है या भगवान का अंश है। ऐसी अनेक मान्यताएं रही, कुछ भक्त ऐसे हुए जो भगवान के प्रेम में बहुत मग्न हो गए और कहने लगे वह जिधर देखता हूं तू ही तू है, उनकी भी ये मान्यता आगे बढ़ गई कि सब जगह भगवान ही है,
जैसे मीरा को श्री कृष्ण ने दिखाई दिया
बिल्कुल
करते थे।
शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, उसके बारे में आज आम लोग तो नहीं जानते। अद्वैतवाद का अर्थ होता है केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, नथिंग एल्स, जगत भी नहीं है, ये मिथ्या जो कि तुम्हें देख दिख रहा है ये स्वप्न है, ये है ही नहीं,
केवल एक ही ब्रह्म,
केवल एक ब्रह्म है, तो सब में वही है। इस मान्यता ने सर्वव्यापकता को और बल दिया था, लेकिन बाद के आचार्यों ने इस बात को खंडित कर दिया कि नहीं, आत्माएं अलग हैं, हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा परम पिता है। आम रूप से उसे हम अपना पिता कहते हैं, तो पिता और पुत्र दोनों ही अलग होते हैं। पिता को पुत्र के अंदर होने की जरूरत नहीं है, पुत्र का अस्तित्व अलग, पिता का अस्तित्व अलग होता है। एक तो ये बात, जब हम ये महसूस करते हैं कि वो हमारा परम पिता है तो हमारे अंदर नहीं, शरीर को चलाने के लिए तो आत्मा ही है ना, परमात्मा क्यों इसमें बैठेगा? लोग शायद सोचते हैं कि वो हमारे कर्मों को देखता रहेगा, हमें सजा देगा, उसको देखने की भी आवश्यकता नहीं। कर्म और फल ये बहुत ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके लिए भगवान हरेक के कर्म को देखे और वो अरबों मनुष्यों के कर्म का लेखा जोखा रखे तो उसका तो हाल क्या हो जाएगा। और वो ऐसे सब जगह होते हुए, अब सोचें जो चीज सब जगह फैली हुई है उसका कोई स्वरूप नहीं होगा तो कैसे उससे हम योग लगाएंगे, कैसे उसे हम याद करेंगे? जब हम किसी को याद करते हैं तो उसका कोई स्वरूप हमारे सामने आता है। तो वास्तव में ये एक भावनात्मक चीज थी, हमें गहराई से सोचना है। शर्मा जी को इसको बहुत गहराई से सोचना, ये महसूस करे क्या मेरे अंदर भगवान है। बहुत सिंपली विचार करने की बात है, भगवान अगर सबके अंदर होता तो सबके अंदर उसके गुण प्रतीत होते, एक अच्छी आत्मा इस देह में रहती है, उसकी अच्छाई सबको प्रतीत होती है। एक अच्छा मनुष्य, नम्र व्यक्ति, बहुत स्वीट, बहुत सत्यवादी, बहुत चरित्रवान, पवित्र, सबको पता चलता है। वो बोले या ना बोले, उसका चेहरा बताता है, बहुत अच्छा व्यक्ति लगता है। भगवान हमारे अंदर हो, शांति का सागर, तो उसकी शांति हमें महसूस ही ना हो। प्यार का सागर हमारे अंदर हो, उसके प्यार के लिए हम तरस रहे हों। भगवान हमारे अंदर हो और हम उससे मिलने के लिए भटक रहे हों। हालांकि लोगों ने इसके उत्तर दिए हैं, हम उसको जानते हैं कि माया का पर्दा बीच में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हम उसको पहचाने, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। भगवान ने स्वयं आकर ये बात कही, मैं सब जगह नहीं हूं, सब जगह तुम हो, आत्माएं हैं। जीव जंतुओं में भी आत्माएं हैं, तो मनुष्यों के अंदर भी आत्माएं हैं। तो मैं नहीं, तुम हो सब जगह। कर्म तुम कर रहे हो, कर्मों के जिम्मेदार तुम हो, और पाप से तो मनुष्य को वैसे ही डरना ही चाहिए, क्योंकि पाप का परिणाम बुरा ही होगा। तो परमात्म सत्ता अलग है। देखिए, सृष्टि भी तीन तरह की है, स्थूल, साकार, आकार फरिश्तों की, और निराकार। आत्माएं और परमात्मा निराकार हैं, फरिश्ते दूसरे वतन में हैं, और इस वतन में साकार मनुष्य हैं, ये स्थूल सृष्टि है। तो जो स्वयं निराकार ही है, वो भला साकार संसार में कैसे हो सकता है? उसका स्थान भी तो निराकार लोक ही है ना, जो ब्रह्म लोक है। फिर हम नाम लेते हैं ब्रह्म लोक, परम धाम, तो वास्तव में उसका धाम सर्वोपरि है, ऊपर एकदम ब्रह्म लोक है, वहीं का वासी है। देखिए, भारत में तो यह आम मान्यता है कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है, भगवान आते हैं। आते कहां से हैं? जरूर उसका कोई धाम है। मुक्ति के जिज्ञासु भी ये संकल्प रखते हैं कि हम यहां से मुक्त होकर चले जाएं। कहां चले जाएं? भगवान के पास जाना है। अगर भगवान यही है, तो उसके पास कहाँ जाना है? तो वास्तव में उसका ज्योति स्वरूप है। मैं लोगों से पूछा करता हूँ, भगवान सूक्ष्मति सूक्ष्म भी है और प्रकाशमान भी है, तो जरूर उसका स्थान है, उसका स्वरूप भी है और उसका स्थान भी है। जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा, तब तक हम उससे योग युक्त नहीं हो पाएंगे, और उसकी शक्तियों का आभास समय होगा नहीं। इसलिए भगवान ने स्वयं आकर इस बात को करेक्ट कर दिया कि तुम ये सब बहुत बड़ी भूल करते रहे कि मुझे सब में व्यापक मानते रहे, ये मेरी ग्लानी तुम करते रहे कि बिल्ली कुत्ते में, गधे घोड़े में।
तो अच्छी थी भ्रातर जी, चलिए परमात्मा ने अब आकर के ये कहा, लेकिन भावना तो बहुत अच्छी थी कि हे प्रभु, मैं जिधर देखता हूँ तू ही तू है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम हर चीज में उन्हें देखते थे। भावना तो हमारी बहुत अच्छी,
भावना बहुत अच्छी थी, लेकिन भावना और व्यवहार में, प्रैक्टिकल में अगर बहुत बड़ा अंतर हो जाए, सिद्धांत के विपरीत अगर भावनाएं हो जाएं, तो कहीं ना कहीं मनुष्य में फिर गिरावट आने लगती है, वो भावना उसकी कमजोरी बन जाती है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को जानना परम आवश्यक है। उसके धाम को जाने बिना हम न तो उसके पास जा सकते, न उसके दिव्य स्वरूप का दीदार कर सकते हैं। देखिए, भगवान को सब देखना चाहते हैं, मोटी सी बात है। अगर उसका कोई रूप ही नहीं है, वो सब जगह है, तो देखने का प्रश्न कहाँ है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को भगवान के रूप के साक्षात्कार भी हुए, उन्होंने उसको महाज्योति के रूप में देखा है, दिव्य ज्योति के रूप में देखा है। हाँ, वो बहुत फैली हुई ज्योति थी, इसलिए उन्होंने मान लिया कि वो सब जगह है। वास्तव में उसने अब इस बात को करेक्ट कर दिया कि मैं ब्रह्मलोक का ही वासी हूँ।
भ्राता जी, ये जो अलग अलग हमारे भक्त हैं, जैसे हमने मीरा की बात की कि मीरा ने भक्ति की तो उनको श्री कृष्ण जी के साक्षात्कार हुए, वो दिखाई दिए। कोई हनुमान जी के भक्त हैं, उन्हें वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें हनुमान जी दिखाई देते हैं। तो ये जो साक्षात्कार होते हैं, या इस प्रकार से जब वो मग्न हो जाते हैं तो उन्हें चारों तरफ ये जो दिखाई देते हैं, तो परमात्मा का जो स्वरूप हम निराकार कहते हैं, तो इस रूप में कैसे दिखाई देते हैं?
देखिए, ये ऐसा है कि जिस भक्त की, जिस इस देव या देवी में अपनी भावना होती है, तो परमात्मा उनको उन्हीं का साक्षात्कार कराते हैं। मान लो एक हनुमान का भक्त है और हनुमान से उसका बहुत प्यार है, और वो रात दिन यही भक्ति कर रहा है, मुझे बजरंग बली के दर्शन होने चाहिए तो मेरी ये साधना सफल हो जाए। तो भगवान उसे यदि अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराए, तो उसको तो तृप्ति होगी नहीं, उसकी साधनाएं निष्फल होंगी। इसलिए जो जिस रूप से साधनाओं में तृप्त है, भगवान उसका उसी रूप से तृप्त करता है, उसी स्वरूप का साक्षात्कार कराता है।
बिल्कुल, तो परमात्मा ही ये जो साक्षात्कार कराने का कार्य हाँ, है वो
साक्षात्कार की जो शक्ति है, जो चाबी है दिव्य दृष्टि देने की, वो केवल एक सर्वशक्तिवान के पास है, वो और किसी मनुष्य या ऋषि मुनि के पास होती ही नहीं।
लेकिन यहीं से एक भ्रांति भी पैदा हो जाती है व्रता जी। मान लीजिए अब हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ तो हनुमान जी का भक्त तो यही सोचेगा कि यही मेरे लिए भगवान है, काली का भक्त ये सोचेगा यही मेरे लिए देवी है, यही मेरे लिए भगवान है। तो जिस रूप का साक्षात्कार होगा उसी को वो भगवान मान लेंगे, तो यहीं से तो एक भ्रांति या भ्रम पैदा हो जाता है।
निश्चित रूप से जो जिसका इष्ट है, इष्ट का अर्थ ही होता है कि जो भक्त है वो किसको सबसे अधिक प्यार करता है, उसका प्रिय देवता कौन सा है, तो निश्चित रूप से वही उसके लिए सर्वोपरि है जिसको भी वो पूज रहा है। लेकिन वो ये जानता है कि हनुमान ने भी राम की भक्ति की थी, राम ने भी शिवलिंग की स्थापना की थी रामेश्वरम, जिसकी यादगार पीछे बना
जी, रावण से
तो
युद्ध से
रावण से युद्ध से पूर्व सागर पार करने से पहले, तो कहीं ना कहीं ये सीढ़ियां हैं जो सर्वोपरि जाती हैं निराकार को, और ये सब नीचे नीचे उसकी रचनाएं, उसके ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर अनेक देवी देवता हैं, लेकिन फाइनली बीज वही है। तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि निराकार परमात्मा से सबका नाता नहीं हो पाया, तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर से हुआ, फिर से राम श्री कृष्ण से हुआ, फिर इन सब देवियों से हुआ, हनुमान आदि से हुआ, और अब गुरुओं से भी हो गया। तो ये भक्ति का भी एक तरह से पतन होता आया है। होनी चाहिए निराकार की, जो सर्वोच्च है उससे ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन अब उसको भी छोड़ के गुरुओं की भक्ति पर आ गए लोग, पेड़ पौधों की और प्रकृति के बहुत सारे तत्वों की पूजा होने लगी, तो ये भक्ति की भी एक लास्ट स्थिति आ गई है और इसके बाद ये समाप्त होगी।
बिल्कुल, हम एकदम जैसे बिखर से गए हैं। तो लगता है जैसे हम यदि हिंदू धर्म की ही केवल बात करें तो कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। कई बार हंसी में लोग देते हैं कि श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो श्री राम के मंदिर में नहीं जाते, या श्री राम के जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण के पास नहीं जाते। तो इतना बिखराव, इतना बटा हुआ जो है, कैसे हम एक हों, कैसे एक तक पहुंचे?
देखिए, ये बात हम भी सुनते आए कि राम के भक्त श्री कृष्ण के मंदिर में नहीं जाते हैं, भले भावना भी रखते हैं, जबकि दोनों को ही विष्णु का अवतार माना गया है, तो फिर ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? लेकिन उनकी भावना श्री राम में है तो ठीक है, उनके लिए वही भगवान है, लेकिन भगवान तो आखिर एक ही है। ये विभिन्न जो पूजाएं हैं, पूजा पाठ और धर्म की जो साधनाओं की जो पद्धति है, इन सबको समेट कर अब एक की ओर हमें चलना चाहिए। जब तक हमारा नाता एक से नहीं होगा, जो हमारा परम पिता है, तब तक हम सब एक नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, हनुमान का भक्त है, हनुमान की कितनी भक्ति करे, वो अपने उसको अपना इष्ट माने, लेकिन वो अपने उसको अपना परम पिता कभी नहीं देखता है। उसको ये भी आभास नहीं होता कि मैं भी आत्मा हूं। एक व्यक्ति चाहे महाकाली की पूजा कर रहा हो, वो उसको माँ समझता हो, लेकिन माँ के साथ पिता भी तो होना चाहिए, उसे परम पिता का कोई आभास नहीं होता है। तो इन सभी भक्ति की सामग्रियों को यदि हमें एक कर देना है, तो हम फिर से अपने परम पिता से जुड़ें, जो इस सृष्टि का बीज है और इन सभी देवी देवताओं का भी क्रिएटर है, तो उसके पास जब हम पहुंचेंगे, उससे जब हमारा नाता होगा, तो वास्तव में ये सभी भक्ति पूजा पाठ भी उसमें समा जाएगी। फिर हमें एक एक की करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे बीज में सब कुछ आ जाता है, तो निराकार से नाता जोड़ने पर ये सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा।
कई बार भक्तों का ये प्रश्न होता है व्रता जी कि मान लीजिए मैं जिनकी पूजा कर रहा हूं उन्हीं से ही मेरी भावना पूर्ण हो रही है, तो फिर और कहीं जाने की क्या आवश्यकता है? जैसे कई बार गुरुओं के लिए भी कहते हैं कि यदि गुरु जी से मेरी भावना पूर्ण हो रही है तो मैं किसी और गुरु के पास क्यों जाऊं। ऐसे में जब हम परम पिता का सत्य ज्ञान देते हैं तो वो लोग इस बात को कहते हैं कि हम यहीं संतुष्ट हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे?
देखिए, बहुत समझने की बात है, भावनाओं का पूर्ण होना, इच्छाओं का पूर्ण होना। गुरु में क्यों भावना होती है? बच्चा नहीं हो रहा था, गुरु ने आशीर्वाद दिया, कुछ किया और बच्चा पैदा हो गया। बिजनेस में लॉस हो रहा था, गुरु के पास पहुंचे, उसने कुछ कराया, बिजनेस ठीक हो गया। किसी को बहुत बीमारी हो गई थी, उसकी बीमारी डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रही थी, गुरु से ठीक हो गई, उसमें भावनाएं हो गई। लेकिन यही तो हमारी साधनाओं का कोई अंत नहीं है ना, ये तो बहुत छोटी चीज है। परमात्मा से हम जुड़ें, उसका ईश्वरीय ज्ञान लें, हम आत्मशुद्धि करें, लक्ष्य है के पते से पावन बन जाएं। लक्ष्य है कि हम अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त कर लें। लक्ष्य है कि हम पुनः मनुष्य देवता बन जाएं। हम परमात्मा के इतने समीप पहुंच जाएं कि उसकी सारी शक्तियां, उसकी संपूर्ण शांति हमारे अंदर आ जाए और हम भी संसार को देने वाले बन जाएं। नहीं तो भक्त बने रहेंगे, हमेशा गुरु के आगे नमन करने वाले, हमेशा दास भाव से रहने वाले। तो भगवान हमें यहीं तक ठहरा देना नहीं चाहता। तुम सब दास बन गए हो, अब जरा महान बनो। तुम सब मांगने वाले बन गए हो, अब देने वाले बनो। तो ईश्वरीय ज्ञान का ये महत्व है कि हमारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठ जाता है। क्यों हम सदा गुरुओं के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहें, क्यों नहीं हम गुरुओं से भी अपना लेवल ऊंचा उठा दें? तो परमात्म ज्ञान राजयोग हमें इस तरफ ले चलता है।
बिल्कुल। तो मतलब हम सीमित ना रहें। कई बार बताया जैसे आपने कहा कि हमारी इच्छाएं बहुत ही छोटी छोटी हैं कि मुझे बच्चा हो जाए, या मुझे इतनी छोटी सी सफलता मिल जाए, या ये हो जाए। यहां से कहीं ऊपर उठने की आवश्यकता है। शायद हम लोग थोड़े से एक संकीर्ण भाव में हैं कि हाँ, हमारी कामनाएं पूर्ण हो रही है तो हम वहीं तक रहें, लेकिन संपूर्ण सत्य तक पहुंचना, परम सत्य तक पहुंचना, ये भी वास्तव में हर एक व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए।
देखिए, छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण होने के बाद नई इच्छाएं जागृत हो जाएंगी
जी, और इनका तो कोई अंत ही नहीं,
नहीं और आत्मा निर्बल होती जाएगी दिनों दिन। मन की शक्तियां क्षीण होती जाएंगी और हम डिपेंडेंट होते जाएंगे कि चलो भाई ये समस्या आ गई, भागो गुरुजी के पास, ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये कर दो। तो एक अधीनता हो गई ना ये। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हम राजाओं का राजा बन सकते हैं। हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि हम एक स्थान पर बैठे संसार के दुखों को हरने वाले बन जाएं। हम इष्ट देव देवियां बन जाएं, गुरुओं से भी बहुत ऊपर, जिनकी आराधना गुरु लोग भी कर रहे हैं। मैं एक बार शंकराचार्य जी के आश्रम में गया, उनसे मिलना था उत्तराखंड में। तो मैं तो बहुत बड़ी भावनाओं के साथ गया था, वे बहुत बड़े विद्वान हैं। शंकराचार्य माना चारों वेदों के प्रकांड पंडित, बाल ब्रह्मचारी, ब्राह्मण और श्रेष्ठ तपस्वी। तो वहां वो थे नहीं, उनके शिष्य थे दो चार। हमें बहुत प्यार से उन्होंने बेचारों ने रखा, जगह भी दे दी अपने आश्रम में, एक रूम भी दे दिया, खाने पीने की सामग्री भी दी। बहुत अच्छा लगा हमें वहां जाके जोशी मठ में। तो लेकिन हमने पूछा भाई शंकराचार्य जी की दिनचर्या क्या होती है, वो कैसे कैसे साधनाएं करते हैं, क्या वो राजयोग की जो साधना है निसंकल्प समाधि उसका अभ्यास करते हैं? तो उन्होंने बताया ये तो हमें पता नहीं, बाकी देवी की मूर्ति थी, बहुत सुंदर मूर्ति थी, चार घंटे महाराज रोज सवेरे इसकी पूजा करते हैं। तो हम तो हैरान हो गए सोचकर कि देखो, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा शिव बाबा से राजयोग का अभ्यास करने के माध्यम से वो हमें इतना ऊंचा उठा देते हैं कि हम इष्ट देव देवियां बन जाए, नारी दुर्गा शक्ति बन जाए, सरस्वती बन जाए, महाकाली बन जाए। तो हमें, मुझे फील हुआ कि हमारा राजयोग कितनी बड़ी चीज है जो हमारी स्पिरिचुअल लेवल को कितना ऊंचा उठा देता है।
बिल्कुल। तो बहुत आवश्यक है इस बात की भी जानकारी रखना और साथ ही अभ्यास करना भ्राता जी, कि हम न केवल वहीं तक सीमित रहें किसी देवी देवता तक या गुरुओं तक, लेकिन उस परम सत्य तक भी पहुंचने का प्रयास अवश्य करें, उसे जानने की कोशिश करें, ताकि हम अपने जीवन में उस संपूर्णता को प्राप्त कर सकें, उस संपूर्ण सत्य को भी जान सकें, अपनी आंतरिक शक्ति और गुणों का विकास कर सकें।
बिल्कुल। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। देखिए, सत्य का ज्ञान, चाहे वो अपने बारे में हो या परमात्मा के बारे में हो या इस सृष्टि की रचना के बारे में, मुक्ति के बारे में, माया के बारे में, जीवन मुक्ति के बारे में, ये सब ज्ञान बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना ही तो सबके अंदर अंधकार है। इस ज्ञान के बिना ही तो मनुष्य ये नहीं पहचानता कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। इसके बिना ही तो उसे रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे शत्रु हैं। वो मान रहा है कि बस यही जीवन है, यही प्रथा है, सब तो यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। इसलिए जहां और चीजें आवश्यक हैं, भक्ति पूजा पाठ को तो एक तरफ रख दे, लेकिन संपूर्ण सत्य ज्ञान जो हमारे चित्त को प्रकाशित करता है, हमें एनलाइटेंड कर देता है, हमारे अंदर एक परफेक्ट एनलाइटनमेंट आ जाती है, उसकी बहुत आवश्यकता है।
दादा जी, आज की तमाम जानकारी के लिए, आज जो परमात्मा के बारे में आपने इतना शुद्ध विशुद्ध ज्ञान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, परम सत्ता एक है जिसे सब धर्म वाले मानते हैं। भले ही हम किसी को भी मान रहे हों, लेकिन उस संपूर्ण सत्य तक पहुंचने का प्रयास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वही एक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जा सकते हैं, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जा सकते हैं। तो वो कौन है, कहां के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, इन सब चीजों की जानकारी हम अवश्य ग्रहण करें ताकि जीवन प्रकाशित हो जाए। नमस्कार।